Hare Krishna,
Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopijana Vallabha, Jaya Girivaradhari, Jaya Girivaradhari, Jaya Gopijana Vallabha, Jaya Girivaradhari, Jaya Girivaradhari, Jaya Yashoda Nandana, Jaya Braja Janaranjana, Jaya Yashoda Nandana, जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीर वनचारे जय कुंज बिहारे जय यमुना तीर वनचारे जय कुंज बिहारे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। यहाँ आज रविवार के दिन राधा गोकुलानंद मंदिर में सत्संग के लिए आने के लिए आज भक्तों की संख्या कम है क्योंकि शायद आज कुछ चल रहा है आपको पता है क्या चल रहा है, तो सब देखने बैठे होंगे, तो खैर आप सब श्रद्धालु हैं, आप सब इन चीजों के बावजूद भी यहाँ आए हैं, तो सफलता उनकी होती है जो अन्य आकर्षणों से मुक्त होके कृष्ण के शरण में आते हैं और रहते हैं। एक भक्त हमें कह रहे थे, क्योंकि उनके जीवन में बहुत परेशानियां आ रही थी, एक के बाद एक बहुत ही ज्यादा कष्ट हो रहे थे, तो उन्हें कहा कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण हमारे सेवा का आदान प्रदान कभी करते नहीं है कि? अभी कोई सीमा होती है, कोई हद होती है, अब इतने कष्ट आए जा रहे हैं एक के बाद एक, और कृष्ण कुछ कर ही नहीं रहे हैं इसके बारे में, बल्कि कष्ट बढ़ रहे हैं, तो क्या कृष्ण हमारी प्रार्थना हमारी सेवा नहीं स्वीकार कर रहे हैं, या क्या कृष्ण की सेवा करना निष्फल है, एक क्या है? तो डावाडोल होने वाले थे, श्रद्धालु हैं इसलिए रहे भक्ति में, आज भी हैं अच्छी तरह से, परंतु ऐसे अनुभव अनेकों के हो सकते हैं, क्योंकि कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएंगे, कौन है ऐसे व्यक्ति जिसके जीवन में ऐसे परेशानियां नहीं आएंगी कि वो पूछेगा भगवान से कि कब तक आप ही ऐसे मेरे साथ करते रहोगे। आप में से कितने भक्तों ने ऐसे प्रश्न किए होंगे मन में भगवान से, हाथ ऊपर कीजिए, ईमानदार बहुत कम है। तो हरेक के मन में कोई ना कोई प्रश्न ऐसे आता है, क्यों ऐसे भगवान मेरे साथ कर रहे हैं, क्या भगवान हमारी पुकार नहीं सुनते हैं, हमारी सेवा प्रार्थना स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा प्रचार प्रसार अनेक लोग करते हैं जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, वो कहते हैं कि देखो कृष्ण के पास नहीं जाना, वहां केवल कष्ट ही मिलेगा, क्योंकि देखो पांडवों को देखो, प्रहलाद को देखो, ब्रजवासियों को देखो, जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए कृष्ण के सब दुखी, तुकाराम का जीवन देखो, अब जितने भी बड़े हुए या तो गरीब थे, या तो कोई कष्ट हुआ, या उनका धन छीन लिया गया, या कुछ तो होता रहा, बल्कि जब हम शिव जी के शरण में जाते हैं तो जैसे मांगते हैं आशुतोष, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बस बहुत अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्रदान कर देते हैं, थोड़े से बेलपत्र अर्पण कर लिए, शायद बोलना चाहिए नहीं था हमें, थोड़ा कुछ कर लिया, प्रसन्न हो जाते हैं, जो भी हमारी इच्छा है पूर्ण कर देते हैं, दुर्गा देवी के पास जाएं जल्दी कर देती है, गणेश जी के पास जाएं जल्दी कर देती है, कृष्ण है वो समय लगाते हैं, कभी नहीं भी देते हैं, कभी जवाब ही नहीं, कभी हम जब प्रार्थना को जवाब तो मिले तो हमें पता चलता है कि ये सुन रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ जवाब ही नहीं मिलता है उनसे। परंतु सत्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करने वाले लोग वास्तव में सबसे भाग्यशाली हैं। कृष्ण देवी देवताओं की तरह नहीं है, कृष्ण मूर्तिमान प्रेम के स्वरूप है, इसलिए वो कभी भी ऐसे किसी के साथ भी ऐसे नहीं कर सकते कि वो कार्य उनके अहित के लिए हो, और खास करके यदि वो भगवान का भक्त हो, श्रद्धालु हो, हृदय से भगवान की सेवा कर रहा हो, तो फिर भगवान उसको त्याग कैसे सकते हैं। ऐसी जो भावना है वो बद जीवों में, हम जैसे बद जीवों में होती है, कोई हमारे प्रति अच्छा कार्य भी करता है तो हम भूल जाते हैं, परंतु भगवान तो ऐसे नहीं है। ईश्वर स्वभाव भक्तेर न लोय अपराध, अल्प सेवा बहुमानी आत्म पर्यंत प्रसाद। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण का विचार कैसे होता है। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का स्वभाव ऐसे है कि यदि उनके भक्त उनके प्रति कोई अपराध भी करते हैं तो उसे गंभीरता से नहीं लेते, जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ को लात मारता है, थप्पड़ मारता है, कुछ करते रहता है, लेकिन माँ गंभीरता से नहीं लेती, पुलिस स्टेशन नहीं जाती कि इसको अंदर कर दो। माँ स्वीकार कर लेती है, बड़े आनंद से स्वीकार करती है, अपराध नहीं मानती है। हाँ, कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे करे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो भगवान अपने भक्तों के अपराधों को, जो जाने अनजाने में हो भी जाते हैं, उनको गंभीरता से स्वीकार नहीं करते, परंतु जो वो सेवा करते हैं, वो छोटी सी छोटी सेवा भी क्यों न हो, उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। अल्प सेवा मतलब बहुत कम सेवा हो, बहुमानी, उसको बहुत बड़ी चीज मानते हैं कि अरे इस भक्त ने मेरे लिए इतना सा किया, एक तुलसी पत्ता लाया मेरे लिए, मेरे लिए एक फल लाके रखा, मेरा एक नाम जप किया, मेरे मंदिर में आके कथा में बैठे, भले सोए लेकिन आए तो सही, घर में सोए हुए होते यहां आकर सो गए, चलो ठीक है आ तो गए, तो इतना कष्ट लिया घर से यहां आने के लिए। तो अल्प सेवा बहु माने, तो छोटी सी सेवा को भगवान बहुत मानते हैं, बड़ा मानते हैं कि ये भक्त ने कितना किया। हालांकि वो सेवा कोई बड़ी चीज नहीं होती है, फिर भी भगवान उसको बहुत बड़ा मानते हैं। और जब भक्त ऐसे सेवा करते हैं तो भगवान इतने कृतज्ञ हो जाते हैं, आभारी हो जाते हैं कि आत्म पर्यंत प्रसाद, कि अपने आप को भी उस भक्त के हवाले करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ये श्लोक आपने कई बार सुना होगा, अद्वैत आचार्य जी ने जब चैतन्य महाप्रभु या श्री कृष्ण को बुलाना चाहा कि यहाँ अभी इस समय इतना घोर अंधकार है अज्ञान का, तथा कथित जो ब्राह्मणगण हैं इतने देवी देवताओं के पूजा में लगे हैं, कर्म कांड में लगे हैं, उनको भक्ति में कोई रुचि नहीं है, परम सत्य क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, इसकी कोई परवाह नहीं है, या तो शुष्क न्याय व्याकरण में पड़े हुए हैं, या तो फिर स्वार्थी कर्म कांड में पड़े हुए हैं, देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, उनका हृदय अहंकार से, घमंड से, स्वार्थ से भरा हुआ है। इतने बड़े तथा कथित विद्वान होने के बाद भी इनके मन में कोई भक्ति की भावना नहीं है भगवान के प्रति, तो फिर आपको ही आना होगा। तो ऐसे वो प्रार्थना करने लगे, और प्रार्थना करते करते उन्होंने कहा, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यः भक्तवत्सलः, कि यदि कोई भक्त तुलसी दल मात्रेण, एक तुलसी पत्ता भी अर्पण करता है, जलस्य चुलुकेन वा, अपने मुट्ठी में थोड़ा सा गंगा जल, यमुना जल और तुलसी पत्ता अर्पण करता है, भक्तेभ्यः भक्तों के द्वारा यदि अर्पण होता है भक्ति से, तो भगवान बहुत आभारी होते हैं। विक्रीणते स्वम आत्मानम, यहां तक इतने आभारी हो जाते हैं कि अपने आप को वो भक्त को बेच डालते हैं, भक्त को कहते हैं कि मैं अभी तुम्हारी संपत्ति हो गया हूं, क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं। तो भक्त वत्सल होने के कारण वो अपने भक्तों की का नुकसान कैसे कर सकते हैं, जब उनके भक्त कोई कठिनाई में है तो कैसे ये संभव है कि भगवान कुछ लापरवाही करेंगे, ऐसे संभव नहीं है। फिर भी संसार में जब कष्ट आते हैं तो लोग विचलित हो ही जाते हैं। ऐसे गोपियों के साथ भी वृंदावन में हुआ। आप तो जानते हैं कि वृंदावन के निवासी श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाते हैं, और ब्रजवासियों में से गोपियां ये सबसे ऊंचे प्रेम भक्त प्रेमा भक्ति के शिखर में हैं, स्थित रहती हैं। अब हुआ ये कि जब श्री कृष्ण वंशीवट में जाकर अपनी बांसुरी बजा रहे थे, गोपियों को बुला रहे थे अपने बांसुरी की ध्वनि के द्वारा, तो गोपियां आ तो गईं, बीच रात में अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, कोई अपने घर परिवार में अपने बच्चों को खिला रहे थे, कोई और परिवार के सदस्यों की सेवा कर रहे थे, सब कुछ छोड़ के चले आए कृष्ण के पास। और कृष्ण ने कहा कि ये उचित नहीं है, आपको वापस जाना चाहिए। तो उन्होंने प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन गोपियां भी कोई ऐसे प्रचार सुनने के भाव में नहीं थीं। तो उन्होंने कहा, नहीं, हम जो भी हो अभी घर में पीछे, हम घर तो छोड़ के आए हैं, अभी हमें आपके शरण में ही रहना है, अभी हम वापस नहीं जाएंगे। तो श्री कृष्ण उनके संग में रहे, उनके भाव को स्वीकार करके उनके संग में थोड़ी देर के लिए रहे, और फिर श्री कृष्ण जो कि अंतर्यामी है, सबके हृदय में स्थित हैं, उनको पता चला कि गोपियों के हृदय में थोड़ा घमंड हो गया है। किस बात का घमंड हुआ है? कि देखो, कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण हमारे साथ में है, व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ में बैठे हुए हैं, खड़े हैं, हमसे बात कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति में ये घमंड या अहंकार बिल्कुल नहीं चलता है, भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो भगवान ने देखा कि अरे, ये मेरे इतने अच्छे भक्त हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, सारे ब्रह्मांड में इनके गुणों का गान होता है, और इनके मन में ये घमंड कहाँ से आ गया कि मैं इतने अच्छे भक्त हूं, देखो कृष्ण मेरे साथ में है। तो कृष्ण वहां से अदृश्य हो गए, निकल गए वहां से, ओझल हो गए। अभी हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी सूचना है, समझ लीजिए कि भगवान संदेश हमें दे रहे हैं कि देखो, जो भी हो, घमंड नहीं आना चाहिए हृदय के अंदर कि देखो, मैं इतना उपवास कर रहा हूं, मैं इतने माला जप कर रहा हूं, मैंने इतनी सेवा की, देखो मैंने इतनी तपस्या की, उतना निर्जल किया, वो तो ऐसी चीजों के बारे में जब मन में सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, भले वो भगवान की सेवा क्यों ना हो, लेकिन जब अपने आप के बारे में हम ऐसे सोचने लगते हैं कि मैंने ऐसे किया, तब घमंड आ जाता है और कृष्ण फिर दूर चले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, नहीं, ऐसी भावना हमको अच्छी नहीं लगती है। जब वो गोपियों को ऐसे छोड़ के जा सकते हैं तो हमें क्यों नहीं छोड़ के जाएंगे? हाँ, हमेशा के लिए कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, और उनके छोड़ के जाना भी इसका मतलब क्या है हम अभी अभी देखते हैं। जैसे हम लोग दूसरे लोगों को छोड़ के जाते हैं हाथ धोकर, भाई बस हो गया, अभी हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, कोई तुम्हें हो जाता है, हम कहते हैं आज से हम बात नहीं करेंगे इस व्यक्ति से, तो वे उसकी ओर देखते भी नहीं है। तो हम जब किसी को छोड़ देते हैं तो हमारा छोड़ना वो अलग हो जाता है, परंतु जब भगवान किसी को छोड़ते हैं, वो वास्तव में छोड़ते नहीं है, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका प्रेम भक्तों के प्रति इतना तीव्र है कि वो कभी नहीं छोड़ सकते। और वैसे भी वो हर एक हृदय में आत्मा के साथ में परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। फिर भी एक बाह्य दृष्टि से श्री कृष्ण वहां से निकल गए। जब निकल गए तो गोपियां बड़ी बेचैन हो गईं, व्याकुल हो गईं, तो यहां वहां ढूंढने लगी श्री कृष्ण को। यहां जंगल में गई, वहां जंगल में गई, लेकिन कहीं मिले नहीं। फिर उन्होंने उनको समझ में आया पद चिन्हों को देखकर कि हाँ, हम में से जो सर्वश्रेष्ठ गोपी है श्रीमती राधा रानी, उनको लेकर श्री कृष्ण गए हैं। परंतु बाद में जब श्री कृष्ण ने देखा कि श्रीमती राधा रानी के हृदय में भी ऐसे कुछ भाव हो सकता है, तो उनको भी छोड़ के वो चले गए, और श्रीमती राधा रानी फिर अन्य गोपियों से मिली, और सारे के सारे जो गोपियां थीं वो एक जगह बैठकर शोक कर रहे थे कि अब कहाँ कृष्ण को ढूंढेंगे, कहाँ गए कृष्ण हम सबको छोड़ के। फिर वो कृष्ण के लीलाओं का वर्णन परस्पर करते रहे, बातचीत करते रहे, जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंतस परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि भक्तों के लिए सच्चा आनंद ये होता है कि वो आपस में मिलकर कृष्ण की बात करते हैं, ये इसमें उनको सच्चा आनंद आता है। तो गोपियों को भी ऐसा आनंद आ रहा था आपस में मिलजुल के, हालांकि बाह्य रूप से वो दुख था, परंतु ऐसा जो विरह का दुख होता है ऊंचे भक्तों में, वो भी एक दिव्य आनंद का प्राकट्य ही होता है। तो खैर कृष्ण की लीलाओं की नकल करने लगे, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगे, उनके नामों का उच्चारण करने लगे। तो ऐसे परस्पर कथा करते 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 वो यहाँ वहां वृंदावन के जंगलों में वनों में घूमते जा रहे थे। फिर उन्होंने वो प्रसिद्ध गोपी गीत भी गाया और उसके बाद फिर श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। तब गोपियों के हृदय में बहुत आनंद हुआ कि चलो श्री कृष्ण वापस आ गए हमारे बीच, बहुत खुश हो गए। अब गोपियों को पता नहीं चला कि ये कृष्ण हैं कौन, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं फिर से चले जाते हैं, इनका भाव हमारे प्रति क्या है। हम तो पूरी तरह से शरणागत हो गए हैं कृष्ण के प्रति, लेकिन इनका जो आदान प्रदान है उसके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। कभी हमारे साथ होते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी फिर से चले आते हैं, क्या भरोसा रखा जा सकता है इनके ऊपर। तो अब जब श्री कृष्ण उनके पास आ गए थे तो उनको ये संशय का निवारण करना था। तो श्री कृष्ण से वो जानना चाहते थे कि ये किस तरह के व्यक्ति है, क्या आप किस तरह के भगवान हो, क्या आप हमारे हमसे घृणा करते हो, ये हमारे ऊपर कृपा करते हो, या आप उदासीन हो। उदासीन मतलब ना इधर ना उधर, कोई परवाह नहीं, तो आप किस श्रेणी में पढ़ते हो। तो ये बात गोपियों को पूछनी थी। तो जब गोपियां आई श्री कृष्ण के सामने तो फिर गोपियां श्री कृष्ण से पूछने लगी। वो कहने लगे कि संसार में तरह तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग ऐसे होते हैं जो अन्यों से तभी प्रेम करते हैं जबकि उन व्यक्तियों से उनको कुछ प्रेम मिलता है या सम्मान मिलता है, कोई लाभ मिलता है, तब उनसे प्रेम करते हैं। ये एक प्रकार के लोग हैं। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा ना, है ना, होते हैं, बहुत सारे होते हैं। दूसरे श्रेणी के ऐसे लोग होते हैं जो सभी से प्रेम करते हैं, यहां तक कि जो लोग उनका अहित करते हैं, जो उनको प्रेम देते हैं उनसे प्रेम तो करते ही हैं, और जो प्रेम उनसे नहीं करते हैं भले उनका बुरा भी करना चाहते हैं वो, फिर भी वो उनसे प्रेम करते हैं। ऐसे भी लोग रहते हैं दुनिया में, ये दूसरे श्रेणी के लोग होते हैं। तीसरे श्रेणी के लोग वो होते हैं जो किसी से भी प्रेम नहीं करते, किसी को भी सम्मान नहीं देते, चाहे वो व्यक्ति उनको सम्मान और प्रेम दे रहा हो या नहीं दे रहा हो। तो ऐसी ये तीन तरह के लोग हैं। तो गोपियों के पूछने का तात्पर्य ये था कि आप कौन से श्रेणी में हैं, क्योंकि आपके भक्त सारे सृष्टि में कितने सारे हैं, लाखों करोड़ों हैं, तो आपका प्रेम जो भक्तों के प्रति है वो किस श्रेणी में आता है। तो फिर श्री कृष्ण आगे उनको समझाते हैं, वो बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। वो समझ लेते हैं कि गोपियों के प्रश्न करने का तात्पर्य क्या है। तो वो कहते हैं कि देखो, जो पहले प्रकार के लोग होते हैं उनका सहृदय या उनका जो उनकी जो मित्रता होती है या प्रेम होता है, वो ना तो सच्ची मित्रता है, सच्चा प्रेम है, और ना ही वो सच्चे धर्म के अनुसार होता है। ऐसे लोग केवल स्वार्थ चाहते हैं। वो स्वार्थी लोग होते हैं, जब कोई उनका भला करता है, उनसे प्रेम करता है, तभी वो जाके दूसरों को प्रेम करते हैं। यदि सामने वाला उनका लाभ नहीं प्रदान करता, कुछ सम्मान आदि नहीं देता, तो उनसे प्रेम नहीं करते। तो ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं। तो स्वार्थी लोगों को धर्म का क्या पता, धर्म का लाभ उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसे दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, तो हमने भी अनुभव किया होगा स्वार्थी लोगों का। और कभी कभी हो सकता है कि हमारे मन में भी ऐसे स्वार्थी भावना आ जाए, परंतु हमें समझना चाहिए कि हमें ऐसे स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। अन्यों की भलाई करें, निस्वार्थ भाव से करें, इस भाव से नहीं करें कि हमें कोई इसके बदले में मिलेगा, कोई भौतिक लाभ मिलेगा, नहीं, क्योंकि ये धर्म के अनुसार नहीं है, भगवान कृष्ण कहते हैं। फिर जो दूसरे श्रेणी के लोग हैं, जो सभी से प्रेम करते हैं, उनसे भी प्रेम करते हैं कि जो लोग उनका बुरा करते हैं, और ऐसे लोग दो प्रकार के होते हैं, कृष्ण कहते हैं। एक है जो बड़े कृपालु होते हैं और दूसरे होते हैं जो माता पिता की तरह होते हैं। दो श्रेणी, जो कृपालु होते हैं माता पिता, वो माता पिता होते जैसे वो अपने बच्चों के प्रति कृपा भावना रखते ही हैं। बच्चा बड़ा भी हो जाए, बच्चे माता पिता को छोड़कर भी चले जाए, लेकिन माता पिता के हृदय में बच्चों के प्रति स्नेह की भावना रहती ही रहती है। ये एक स्वाभाविक चीज है, संसार का नियम है। परंतु इससे भी श्रेष्ठ वो लोग हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जैसे कि प्रह्लाद महाराज। वो सभी से प्रेम करते हैं, कभी ये किसी से अपेक्षा नहीं करते हैं कि मेरे प्रेम के बदले में उनको मुझे कुछ देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, कुछ लाभ देना चाहिए, या यहां तक कि वो अपेक्षा नहीं करते कि इसे भी मुझे प्रेम करना चाहिए। वो मुझे प्रेम करे, सम्मान दे या न दे, मैं मेरा प्रेम प्रदान करूंगा। तो ऐसे शुद्ध भक्त जो होते हैं वो सभी से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका हृदय भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम से भरा हुआ होता है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ श्रेणी का कृष्ण भक्त होता है वो वास्तव में सभी से प्रेम करता है। परंतु जो कृष्ण भक्त नहीं होते हैं वो अन्यों से प्रेम नहीं कर सकते हैं, वो नहीं जानते हैं सच्चा प्रेम क्या है। वो तो केवल शरीर के स्तर का प्रेम जानते हैं। तो इस तरह भगवान के शुद्ध भक्तों का जो निस्वार्थ प्रेम है वो श्रेष्ठ है, और संसार के संबंधों में माता पिता आदि का प्रेम जो होता है वो थोड़ा निकृष्ट स्तर का है। फिर भी एक निस्वार्थ भावना से वो बच्चों का देखभाल करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत स्वार्थ तो रहता है कि ये बच्चा जब बड़ा होगा मेरा ख्याल रखेगा, मेरी देखभाल करेगा, इतना तो स्वार्थ होता है सभी में। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ऊंचे श्रेणी के माने जाते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी कोई भी भावना नहीं रहती है। और जो तीसरे श्रेणी के लोग होते हैं वो होते हैं जो किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं, या बाह्य कम से कम प्रेम प्रकट नहीं कराते हैं। चाहे उस सामने वाले व्यक्ति ने प्रेम प्रदान किया हो, सम्मान प्रदान किया हो या नहीं। तो ऐसे चार प्रकार के लोग होते हैं कृष्ण कहते हैं। एक होते हैं जो आत्माराम पुरुष होते हैं, आत्म साक्षात्कारी पुरुष। वो अपने अंतःकरण में आत्मा के आनंद में रमण कर रहे हैं, आध्यात्मिक आनंद में। तो उनको संसार की कुछ पड़ी नहीं है, संसार से बिल्कुल विरक्त हैं ये। बाह्य दृष्टि उनकी नहीं है, है भी लेकिन नहीं वास्तव में। देखते हुए भी उनको कुछ परवाह नहीं है बाहर के संसार की, क्योंकि अंदर ही अंदर वो अपने हृदय में आध्यात्मिक आनंद में रमण कर रहे होते हैं। दूसरे हैं आप्त काम। आप्त काम जो भौतिक दृष्टि से संतुष्ट है, भले वो आध्यात्मिक स्तर पर न हो, परंतु उसकी इच्छाएं पूर्ण हो गई है, इसलिए वो अपने आप में अभी संतुष्ट है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए उससे ना किसी से प्रेम देना है ना लेना है, उसको वो उदासीन रहता है इस प्रकार से। तीसरे प्रकार का व्यक्ति जो प्रेम नहीं करता है अन्यों से, वो है अकृतज्ञ, जो आभारी नहीं होता है किसी से। अन्यों से लाभ प्राप्त करता है परंतु सोचता नहीं कि इस व्यक्ति ने मेरा इतनी मेरी मदद कर ली, मुझे कृतज्ञ होना चाहिए उसके प्रति, ऐसा नहीं सोचता है। उल्टा उनकी निंदा करने शुरू कर देगा। कभी कभी ऐसे होता है, हमारे मायापुर मंदिर में पहले ऐसे अनुभव हुआ था। वो सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था करने लगे कि जो भी आए चलो मुफ्त में प्रसाद ले लो, जितने भी गांव के लोग थे पास में सबके लिए। तो उन्होंने, इस गांव के लोग आने लगे, फिर एक दिन किसी कारण से कुछ कमी हो गई या था भी, लेकिन वो सब निंदा करने लगे कि अरे आज देखो ऐसा कम हो गया, आज इसमें ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो मंदिर की भली निंदा है, तो भक्त लोग सोच लगे अब इतना हम इनके लिए कर रहे हैं, आके उनके घरों घरों तक उनको भोजन दिला रहे हैं, फिर भी देखो उल्टा मंदिर की निंदा कर रहे हैं ये लोग, तो उन्होंने फिर बंद कर दिया करना। तो अकृतज्ञ, किसी से लाभ पाने के बाद भी, किसी से प्रेम प्राप्त करने के बाद भी उसका कोई आदान प्रदान नहीं। और चौथे प्रकार के लोग होते हैं गुरुद्रोही। गुरुद्रोही वो होते हैं जो अपने से जो वरिष्ठ हैं उनका ही विरोध करने लगते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनके प्रति घृणा की भावना, द्वेष की भावना रखते हैं, भले उसके लिए कोई कारण हो या न हो। कभी कभी बिना कारण के कोई ईर्ष्या हो जाता है तो अपने वरिष्ठों से, अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनके प्रति गलत भावना रखते हैं, जो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति भी एक द्वेष भावना है, जिनकी रक्षा हमें करनी चाहिए उनके प्रति भी हमारी ऐसी भावना होती है। तो इस तरह है, ये चार प्रकार के लोग होते हैं श्री कृष्ण कहते हैं, जो कि किसी से प्रेम नहीं करते हैं। तो अब श्री कृष्ण का निष्कर्ष क्या है कि वो कौन से श्रेणी में पड़ते हैं, पहले श्रेणी में आते हैं या दूसरे श्रेणी में आते हैं या तीसरे श्रेणी में आते हैं, और तीसरे श्रेणी में आते हैं तो चार प्रकार के जो लोग हैं तीसरे श्रेणी में, इनमें आते हैं कि किस में आते हैं। तो श्री कृष्ण गोपियों का आश्वासन दिलाते हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं तीसरे श्रेणी में आता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में। वो कहते हैं कि मेरा जो प्रेम मेरे भक्तों के प्रति है और सबके प्रति है वो कभी कम नहीं होता, परंतु अभी जो आपको लग रहा है कि मैं आपके बीच में से चला गया, इसके पीछे भी एक कारण है। तो क्या कारण है और भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्या भगवान अकृतज्ञ है या भगवान अपने भक्तों के प्रेम का आदान प्रदान नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। तो आइए अब हम दशम स्कंद के 32वें अध्याय, जिसका शीर्षक है पुनः मिलाप, इसके 20वें श्लोक का पाठ करते हैं। न अहम् तु सख्यः भजतः अपि जन्तून् भजामि अमीशाम् अनुवृत्ति वृत्तये यथा अधनः लब्ध धने विनष्टे तत् चिन्तया अन्यत् निभृता न वेद। नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे चिन्तयान् निभृतो न वेद। नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद। तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद। बोलिए। तु सख्या भजतो पिजन्तोन् भजाम्यमीशामनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन् निभृतो न वेदे। माता जी कोई नाहं तु सख्य भजतो पिजन्तोन् भजाम्यमीशामनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तचिन्तयान्यन् निभृतो न वेद। अनुवाद। किंतु हे गोपियों, मैं उन जीवों के प्रति की भी तत्क्षण स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं। इसका कारण यह है कि मैं उनकी प्रेमा भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहता हूं। इससे वे उस निर्धन व्यक्ति के सदृश बन जाते हैं जिसने पहले कुछ संपत्ति प्राप्त की थी किंतु बाद में उसे खो दिया है। इस तरह है वह इतना चिंतित हो उठता है कि और कुछ सोच ही नहीं पाता। तो श्री कृष्ण यहां क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं प्रेम करना बंद कर देता हूं, परंतु अभक्तों की बात दूर है। जब मेरे भक्त होते हैं जो मेरी पूजा करते हैं, कभी कभी क्या होता है, मैं इन उन जीवों के प्रति भी तत्क्षण स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं उनके प्रति। तत्क्षण भगवान प्रेम प्रदर्शित नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि उनके हृदय में प्रेम नहीं है। और वो ऐसे तत्क्षण प्रेम प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो भक्तों के प्रेमा भक्ति को, उनके स्नेह को प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं और तीव्र बनाना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों से ये कह रहे हैं कि आपकी भक्ति को और भी प्रबल बनाने के लिए, प्रगाढ़ बनाने के लिए मैं आपके संग से दूर निकल गया, ताकि मुझे प्राप्त करने के बाद जब आप मुझे खो दिए तो उस समय जो एक उत्कंठा आपके हृदय में जागृत हुई कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, उससे आपके हृदय में मेरे प्रति भक्ति की भावना और भी तीव्र हो गई। और इसके लिए एक उपमा श्री कृष्ण देते हैं, और उपमा है एक ऐसे गरीब व्यक्ति का जिसे अचानक कोई धन मिल जाता है, और जैसे ही धन मिलता है फिर वो धन खो भी जाता है। अब देखिए, पहले वो गरीब था, धन की बहुत अभिलाषा कर रहा था, अब बहुत दिनों के बाद, बहुत कष्टों के बाद उसे धन मिल गया। अब मिलने के बाद वो अचानक छीन लिया गया उससे, तो फिर वो क्या सोचेगा? केवल उस धन के बारे में ही सोचता रहेगा, अरे रे रे मेरे पास वो धन था, क्या हो गया, कितने दिनों के बाद मुझे धन प्राप्त हो गया, मैं कितने सपने देख रहा था धन के बारे में और धन से क्या करूंगा, अब वो सब चला गया। तो 2400 घंटे ऐसा व्यक्ति धन के बारे में ही सोचता रहेगा। तो ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं किसी भक्त को देखता हूं जो मेरी सेवा करने के लिए इच्छुक है, तो मैं तुरंत उसके सामने प्रेम का प्रदर्शन नहीं करता हूं, तुरंत उसकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता हूं, तुरंत प्रेम का आदान प्रदान नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसका प्रेम मजबूत हो जाए। आखिर देखिए, जब भक्त श्री कृष्ण के पास जाते हैं, सच्चे भक्त, वो क्या लेकर जाते हैं, क्या प्रार्थना लेकर जाते हैं कि मुझे आपका शुद्ध भक्त बनाइए, यही तो प्रार्थना है ना, आपकी सेवा में मुझे लगाइए। तो जब हम भगवान के पास इसी प्रार्थना को लेकर जाते हैं कि मुझे आपके प्रति प्रेम दीजिए, तो भगवान वही तो कर रहे हैं, हमारे प्रेम को तीव्र बनाने के लिए वो हमें कभी कभी जवाब नहीं देते हैं तत्क्षण, परंतु भगवान गोपियों को आश्वासन देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल जाता हूं या प्रेम नहीं करता हूं, मेरा प्रेम वैसे का वैसे रहता है, बल्कि बढ़ते रहता है, परंतु मैं सही समय में आके फिर उनको आश्रय प्रदान करता हूं। जब इस तरह से उनकी कामना रहती है, वो संकोच होता है हृदय में कि अरे कृष्ण मुझे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, कृष्ण मेरी सेवा का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा एक पछतावा सा होता है उनके हृदय में कि शायद मेरी भक्ति ठीक नहीं है, मैं अयोग्य हूँ, मैं जप ठीक से नहीं कर रहा हूँ, मुझे कृष्ण और भी चाहिए, और अच्छी तरह से मुझे जप करना चाहिए। तो ऐसी भावना भगवान चाहते हैं हमारे हृदय में। जब ऐसे एक उत्कंठा होगी, एक बेचैनी होगी कृष्ण के लिए कि कब कृष्ण मुझे मिलेंगे, ये एक लालसा होगी मन में, तब श्री कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। तो ऐसे एक बेचैनी की अवस्था में लाने के लिए, जिसमें कि हम श्री कृष्ण के प्रति लालसा रखेंगे, हम लोभी हो जाएंगे श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, ऐसे हृदय की अवस्था को लाने के लिए भगवान कभी कभी अपने प्रेम का प्रदर्शन हमारे सामने उस तरह नहीं करते हैं जैसा कि हम चाहते हैं, परंतु वो हमारे प्रेम को बढ़ाने के लिए ही कार्य करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में नारद जी अपने शिष्य श्रील व्यास देव को बताते हैं कि वो अपने पूर्व जन्म में, अर्थात नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे और उनकी माता का देहांत हो गया, सांप ने डस लिया, माता का देहांत होने के कारण अब वो अकेले रह गए सारी दुनिया में। तो घर से निकल के इधर उधर घूम रहे थे। इसके पहले उनके घर में कई साधु आए थे जो कृष्ण भक्त थे, चातुर्मास के समय वो रहे थे वहां पर, और उनके भजन कीर्तन कथाएं आदि चलती रहती थी। तो उनका संग इस बालक ने बहुत किया था, साथ साथ उनके महाप्रसाद को स्वीकार किया था, उनके उच्छिष्ट को। इससे इस बालक के हृदय में बहुत तीव्र भक्ति की भावना जागृत हो गई थी, संसार से विरक्ति की भावना भी आ गई थी। तो जैसे ही माता का देहांत हो गया, बिना कोई शोक किए हुए, संकोच किए हुए, वो निकल पड़े और जंगलों में से, गोचर भूमियों में से, गांवों में से, शहरों में से घूमते 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 आखिर एक जगह आके ध्यान में बैठ गए एक पेड़ के नीचे। जब वहां पर ध्यान में बैठे हुए थे काफी समय तक, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। और अचानक जब भगवान प्रकट हुए, वही भगवान पुनः अदृश्य हो गए। तब उस बालक को बड़ी हैरानी हो गई, बहुत बेचैन हो गया वो बालक कि अरे ये क्या हो गया, इतना ध्यान करने के बाद भगवान मेरे सामने आए, प्रकट हुए, मैंने उनका दर्शन किया, परंतु अचानक ये क्या हो गया, भगवान अदृश्य हो गए, हो सकता है मैंने ध्यान ठीक से नहीं किया होगा, तो मैं इस तरह से ध्यान में बैठूं, उस तरह से ध्यान करने का प्रयास करूं, तो हो सकता है भगवान का दर्शन मैं पुनः कर पाऊंगा। तो ये न केन प्रकार वो लड़का, वो बच्चा जो है, वो कोशिश कर रहा था कि कैसे भी ध्यान में बैठे ताकि पुनः वो दर्शन मुझे मिल जाए भगवान का, परंतु नहीं हुआ। जितना भी वो बच्चा प्रयास कर रहा था, भगवान सामने आए ही नहीं। फिर भगवान की आवाज सुनाई पड़ी। भगवान ने उस बालक से कहा कि हे वत्स, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, परंतु और इस जीवन में तुम्हारे सामने मैं प्रकट नहीं होऊंगा। एक बार प्रकट हुआ हूं अभी, तुम्हारे सामने तुम्हारे सेवा का और प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, तुमको आश्वासन दिलाने के लिए कि मैं हूं, परंतु दोबारा मैं नहीं प्रकट होऊंगा तुम्हारे सामने, क्योंकि अभी तक तुम्हारे हृदय के अंदर जो कलमश हैं वो पूरी तरह से नष्ट हुए नहीं हैं, थोड़े बहुत हैं अभी, लेश मात्र हैं। तो इसी तरह से लालसा की भावना से मेरे दर्शन की कामना करते रहो, जैसे अब कर रहे थे। और ऐसे जो उत्कंठा तुम्हारे हृदय में होगी, एक बेचैनी सी होगी कि मैं कृष्ण का दर्शन कब करूंगा कब करूंगा, ऐसे बेचैनी से तुम्हारे हृदय में जितने भी कलमश बचे हुए हैं, वो थोड़े बहुत भी क्यों ना हो, वो सब नष्ट हो जाएंगे और फिर तुम मेरे पास आओगे। तो ये मेरा आश्वासन है तुम्हें। तो भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से, मतलब जो पहले जीवन में जो पुत्र थे, दासी के पुत्र, वो बालक थे, उनसे ऐसे कहा। तो ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण बात है। समय से पहले भगवान का दर्शन करने का, साक्षात दर्शन करने की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए, परंतु केवल भगवान की सेवा में इतना तत्पर रहना चाहिए कि भगवान भी एक दिन सोचेंगे कि ये भक्त मेरी इतनी अच्छी सेवा कर रहा है कि मुझे अभी एक न एक दिन इस भक्त को का उद्धार करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। इस तरह से भगवान कभी अपने भक्त को भूलते नहीं है। जब भगवान हमारी सेवा का आदान प्रदान नहीं करते हैं, या जब हमें ऐसे लगता है कि वो नहीं कर रहे हैं, वो वास्तव में कर रहे होते हैं, परंतु कैसे करते हैं, उस तरह से नहीं जैसे हम चाहते हैं। वो उस तरह से करते हैं कि जो हमारी भक्ति को बढ़ने के लिए अच्छा हो, उनके प्रति जो प्रेम की भावना है वो बढ़े, ऐसे भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। अब देखिए प्रहलाद के ऊपर भी भगवान ने कैसी कृपा की। प्रहलाद ने कभी क्या शिकायत की कि भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, मैंने आपकी इतनी सेवा की परंतु देखिए मुझे ऐसे पिता दे दिया आपने। या कभी कभी पिता का बच्चा ऐसे होता है कि भगवान से कहता है, अरे क्या भगवान हमें इतनी भक्ति करते हो, ऐसा बच्चा मुझे दे दिया आपने, या ऐसे पति दे दिए, ऐसे पत्नी दे दी, ऐसे भाई बहन दे दिए। नहीं, ये भी भगवान की योजना से ही हुआ है, इसके पीछे भी कारण है। भगवान हमें उनके शरण में लाना चाहते हैं, हमारी भक्ति को और तीव्र करना चाहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो भगवान के पार्षद होते हैं, जो सबसे ऊंचे भक्त होते हैं, उनके जीवन में भी कष्ट आते हैं, परंतु भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं वो केवल कर्मों के फल नहीं होते हैं। जो साधारण संसार के लोग होते हैं, उनके जो दुख होते हैं, कष्ट हैं, वो उनके कर्मों के फल होते हैं। परंतु प्रहलाद महाराज, पांडव गण और ब्रजवासी गण, इनके जो कष्ट होते हैं वो कर्म सिद्धांत के अनुसार नहीं आते हैं, वो भगवान की विशेष कृपा होती है। क्योंकि भगवान सर्वप्रथम सारे दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो ये असली भक्त हैं मेरे, इतने कष्ट होने के बाद भी मेरी सेवा को छोड़ते नहीं हैं और मेरे प्रति कुछ अपशब्द नहीं कहते कि भगवान ऐसे क्यों किया आपने मेरे साथ, कि देखो ऐसे होना चाहिए। क्योंकि भगवान सारे दुनिया के सामने कोई आदर्श उदाहरण रखना चाहते हैं ताकि हमें कोई प्रेरणा मिले कि देखो इन लोगों को इतना कष्ट हुआ फिर भी उन्होंने भक्ति छोड़ी नहीं, और हमारे कष्ट तो उनके सामने तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्यों इतना शिकायत कर रहे हैं, हम क्यों इतना रो रहे हैं, हमें भी और श्रद्धालु होना चाहिए, हमें भी भगवान की और तीव्रता से शरण लेनी चाहिए। तो ये पहला कारण होता है। और दूसरा कारण ये होता है कि वो उनके प्रेम को और भी बढ़ाना चाहते हैं। देखिए वृंदावन में रोज की बात थी ये तनाव, रोज एक न एक कोई असुर आ ही जाता था, कभी कभी एक से ज्यादा भी आ जाते थे। बल्कि आचार्यों ने ऐसे कहा कि भोजन दोपहर का खाने के पहले एक दो असुरों का वध करके बिना भोजन नहीं लेते। कंस इतने सारे असुरों को भेजा करता था वृंदावन में। अब ब्रजवासियों को तो ये कल्पना नहीं थी ना कि ये तो भगवान है, वो तो उनको अपना लाडला मानते थे। तो हमेशा कृष्ण के प्रति उनके मन में चिंता की भावना रहती थी कि अरे आज कृष्ण को कुछ हो जाएगा, कैसे कृष्ण की रक्षा करें। तो ऐसा नहीं कि ब्रजवासी गण बिल्कुल आराम से रहते थे, उनके जीवन में कोई चिंता नहीं थी, कोई तनाव नहीं था। रोज का तनाव था कि आज कोई असुर आएगा, अब क्या होगा। फिर भी ऐसे तनाव के बीच में रहते हुए भी, क्योंकि वो कृष्ण के बारे में ही तीव्रता से सोचे जा रहे थे, तो उनका प्रेम और भी मधुर और भी प्रगाढ़ होते जा रहा था, और भी शुद्ध होते जा रहा था। और खास करके वो ब्रजवासी गण जो कि अनेक जन्मों से भक्ति करके अब गोपियों के गर्भ से जन्म ले चुके थे वृंदावन में, जिनको साधन सिद्ध भक्त कहते हैं, तो उनके हृदय में थोड़े बहुत कलमश हुए होंगे लेश मात्र। तो भगवान उनको भी नष्ट करना चाहते थे और उनके हृदय में प्रेम को और भी तीव्र बनाना चाहते थे। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी जब कठिनाइयां आएंगी और वो आते रहेंगी अंतिम क्षण तक, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे कृष्ण हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं, कृष्ण सुनते नहीं हमारी बात। हाँ सुन रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, हमारे साथ हैं, साथ छोड़ा नहीं है उन्होंने। कभी कभी जब एक छोटा बच्चा होता है, वो चलना सीखता है, तो माता या पिता या कोई भी दूसरे व्यक्ति पीछे से उसको उठाते हैं और फिर उसको उसका हाथ पकड़ लेते हैं और चलाते हैं। कभी कभी गड़गड़ाता हुआ चलने लगता है और फिर पीछे से वो माता या पिता हाथ छोड़ देते हैं ताकि वो अपने आप चलना सीखे। वो थोड़ा बहुत चलने लगता है, फिर इधर उधर देखता है, अरे नहीं है माता पिता, गिर जाता है। फिर से सोचता है कि नहीं है, लेकिन वो है पीछे। जैसे ही वो गिरते पीछे से पकड़ लेते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी हम जब चल रहे होते हैं, भगवान चाहते हैं कि हम अपने पैरों में खड़े होकर आगे चलें। ऐसा नहीं कि हर बात में हम रोएं, ऐसा नहीं कि हर बात में हम शिकायत करें, ऐसा नहीं कि हर बात में हम अन्यों में दोष देखें कि इनकी वजह से मेरे जीवन में ऐसे हुआ। नहीं, भगवान चाहते हैं कि हम और हट्टे खट्टे हो जाएं आध्यात्मिक स्वास्थ्य में। तो पीछे हैं हमारे, हमें चला रहे हैं, चलो उठो उठो। थोड़ी देर लगेगी अच्छी तरह से इस भक्ति के राजमार्ग में चलने के लिए, परंतु प्रयास करो, प्रयास करो। कभी हम निराश होकर बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं चलते चलते, अब नहीं करेंगे भक्ति, नहीं 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 करना चाहिए, चल फिर से भगवान उठाते हैं। किसी भक्त को भेज देते हैं आके, जो आके हमें कहेगा अरे प्रभु नहीं नहीं करना चाहिए, जप छोड़ो नहीं, चलो फिर से हम जप करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे भगवान किसी न किसी तरह से अपने भक्तों के द्वारा, कभी अपने आप भी, वो हमें प्रेरणा देते रहते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए भक्त वो है जो कभी निराश नहीं होगा, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा बड़े धीरज रख के करेगा और उस दौरान भगवान की सेवा निस्वार्थ भावना से और उत्साह पूर्वक करता रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप में से किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सूचना है, उसके बाद में कीर्तन।
हरे कृष्ण, तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे परम पूज्य भक्त सांबर स्वामी महाराज जी का आज के विशेष प्रवचन के लिए। तो आइए तीन बार जोर से हरि बोल बोल के महाराज जी का धन्यवाद देते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब हम स्वागत करना चाहेंगे उन भक्तों का जो आज पहली बार इस मंदिर में उपस्थित हुए हैं। तो जो भक्त आज यहाँ पे पहली बार आए हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि कुछ देर के लिए अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। कृपया संकोच ना करें। हम प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा गोकुलानंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तथा गौर निताई से कि वे उनकी कृपा आप सबको प्रदान करें। आइए इन नए भक्तों का अंतिम बार जोर से हरि बोल बोल के स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो कृपया बैठ जाइए। आने वाले 5 मार्च को हम श्री चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव दिवस यानी कि गौर पूर्णिमा का महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर विशेष कथा का आयोजन किया गया है और कथा करेंगे परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, और कथा का तिथि होगी 3, 4 और 5 मार्च को। समय होगा शाम को ठीक 7 बजे। तो जो भक्त यहाँ पे उपस्थित नहीं है तो कृपया आप सबको इसकी जानकारी दे दे कि 3, 4 और 5 मार्च को विशेष कथा होगी और दिन शाम को ठीक 7 बजे। जो भक्त भक्ति शास्त्री के लिए नामांकन कर चुके हैं, उन्होंने जो कोर्स भी अटेंड किया है परंतु उसकी जो एग्जाम परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में भाग नहीं लिया, इन भक्तों के लिए फिर से एक बार इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो जो भक्त इस परीक्षा को देना चाहते हैं तो वह कृपया अपना नाम रिसेप्शन काउंटर में दे दे। आप सबकी भक्ति शास्त्र की परीक्षा 19 मार्च को होगी, उस समय की सूचना आपको 18 मार्च को भक्ति शास्त्री क्लास में दी जाएगी। जिन भक्तों ने रथ यात्रा के लिए डोनेशन कलेक्शन किया था और उसके रिसीट बुक यानी कि पावती पुस्तिका अभी तक वापस नहीं की है तो कृपया जल्द से जल्द अकाउंट ऑफिस में रिसीट बुक जमा कर दें। आने वाले शुक्रवार यानी कि 27 फरवरी को खानापुर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मनाई जा रही है और इस रथ यात्रा में परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज भी हिस्सा लेंगे। जो भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं उनके उनके लिए यहाँ से जाने के लिए मंदिर के प्रांगण से बस की व्यवस्था की गई है। बसेस यहाँ से सुबह 10 बजे यहाँ से रवाना होगी। तो जो भक्त इस बस का सुविधा का फायदा लेना चाहते हैं कृपया 10 बजे यहाँ पे उपस्थित रहें। रविवार यानी कि 1 मार्च को अमल की एकादशी का दिवस है और उसके अगले दिवस पर यानी कि सोमवार को पारण का समय होगा सुबह 6:49 से 10:40 तक। आने वाले रविवार को प्रसादम बनाने की सेवा इस प्रकार से है। कृष्ण कन्हैया सत्संग मंडल जिसके सेवक है श्याम बिहारी प्रभु, गोविंद गोपाल सत्संग मंडल जिसके सेवक है सुकुमार प्रभु, और बाघावड़े प्रचार केंद्र बाघावड़े जिसके सेवक है पालू पाटिल प्रभु और राम गोपाल प्रभु।
हरे कृष्णा। जैसे कि रथ यात्रा के में जो जिन भक्तों ने सत्संग मंडल से कलेक्शन किया था तो उनके लिए पिछले जब यात्रा हुई थी अभी परसों तब में हमने जो ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन जिन्होंने किया था उसके लिए हमने यहाँ पे नाम तो करे थे और कुछ सत्संग के नाम नहीं आए थे तो इसके लिए अभी जो सत्संग मंडल और भक्त यहाँ पे उपस्थित से विनती करते हैं जैसे ही नाम पुकारेंगे रुपया आइए और मंदिर की ओर से छोटी सी भेंट आपको हम यहाँ पे देना चाहेंगे कि कृपया जल्दी से आके अपना जो उपहार है लेके जाइए। तो इसमें पंचीमदन सत्संग मंडल जिसकी सेवा के दर्शन प्रभु तो उनकी सत्संग मंडल से यहाँ पे वो उल्लास होंगल प्रभु रुपया है तो आगे आइए। उल्लास होंगल प्रभु, शांता चिक्कोड़ी माता जी, शोभा बांदुर के माता जी, शांता चिक्कोड़ी माता जी, शोभा बांदुर के माता जी, हरी वो। और पंचजना भयारी सत्संग मंडल जिसके सेवक है सुदर्शन प्रभु आर्य तो सत्संग मंडल से वसंती राधा माता जी, किशोरी प्रीति माता जी और विप्र कृष्ण प्रभु जी इन भक्तों से विनती करते हैं कि आगे आइए और आप मंदिर को छोटी पे स्वीकार करें। वसंती राधा माता जी, किशोरी प्रीति माता जी और विप्र कृष्ण प्रभु हरी वो। आप सब भक्तों का धन्यवाद जिन्होंने बड़ी उत्साह से रथ यात्रा में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा में सफल होने के लिए इतना परिश्रम किया है। तो जिन भक्तों का नाम यात्रा में भी पुकारा था लेकिन जिन्होंने अभी तक जिनको पच्चीस नहीं मिला है तो उपहार नहीं मिला है उनसे विनती करते हैं कि कृपया मुझसे आज ही मिलिए और ये भेंट छोटी सी भेंट आप मुझसे मिलकर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।
हरे कृष्णा। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। आज का प्रसाद हम पुरस्कृत किया है श्रीमान सुदर्शन प्रभु जी ने, तो हम विनती करते हैं सुदर्शन प्रभु या उनके परिवार से यहाँ पे कोई अगर उपस्थित है तो मंदिर की तरफ से एक उपहार प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आए। आइए हम सब इन भक्तों का धन्यवाद देते हैं तीन बार जोर से हरी बोल बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी संकीर्तन होगा और उसके बाद महाप्रसाद। कृपया संकीर्तन के लिए खड़े हो जाइए।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna.